ओ आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति संबंधी भक्तों के भाव को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभ्यास के लिए श्लोक 28वां श्लोक, छंद परिवर्तन हो गया। सारूप्यम तव पूजने शिव महा देवेति संकीर्तने सामीप्यम शिव भक्ति धुरीय जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम च चराचरात्मकतनु ध्याने भवानी पते सायुज्यम मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम् तत्पादाम्बुजमर्चयामि परमम् त्वाम् चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशम् शरणम् व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्ष्याम् मे दिश चाक्षुषीम् सकरुणाम् दिव्यैश्चिरम् पार्थिताम् शम्भो लोकगुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशम् कुरु वस्त्रोद्धूतविदौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विस्नुता गन्धे गन्धवः त्वमात्पन्नमपचने अन्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चन गर्वतास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरो। भक्ति सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत की तरह जीव ब्रह्म की एकता, परमात्मा और जीवात्मा की एकता की चर्चा नहीं होती है। भक्ति सिद्धांत का चरम लक्ष्य है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टि, ये चार प्रकार के मोक्ष में से किसी भी एक प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति, ये भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य है। भक्त इतने से कृतार्थ हो जाता है, इसके आगे की बात वो नहीं सोचता। जैसे भूखा व्यक्ति को भूख निवृत्ति के लिए भोजन की अपेक्षा है, वो जो भोजन है भूखा व्यक्ति ये विचार नहीं करता किसके घर का है, किसने बनाया है, कैसी कमाई का बनाया है, कहां से लाया है, ये विचार नहीं करता है। उसका तात्कालिक लक्ष्य रहता है कि भूख की किसी प्रकार से निवृत्ति हो। इसी प्रकार के संसार के विषयों में रचपच हुआ हुआ जीवात्मा भगवान से और बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता और बहुत दूर की बात नहीं सोचता। तत्काल वह इन सारे झंझटों से मुक्त होना चाहता है और इसके बावजूद सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टि, भगवत कृपा से ये चार में से कोई भी एक मिल जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के परम आचार्य होते हुए भी उस ज्ञान की भूमिका में से यह नहीं बोल रहे हैं इस समय। इस समय एक दुखी, एक साधारण जीवात्मा की भूमिका में आकर बोल रहे हैं, एक भक्त की भूमिका से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इससे क्या उपदेश मिलता है कि सर्वसाधारण हम संसार और सांसारिक दुख और झंझट से मुक्त होना चाहते हैं तो भी वह शिव के ही शरण में जाना चाहिए। ये संदेश शंकराचार्य जी इन भावों के माध्यम से देना चाहते हैं। यदि शिव शरण के अलावा अन्य कुणी किसी उपायों से इस संसार के झंझट से मुक्ति होना चाहते हो तो वो संभव नहीं होगा। तो एकमात्र शिव शरण ही, शिवाश्रय ही, शिव भक्ति ही उसमें सक्षमता है, क्योंकि वे काम, वह भाव, वह फल प्रदान करने में साक्षात परमात्मा समर्थन है, समर्थ है। अब यह शिव शब्द का अर्थ परमात्मा ले लेना। आज हम किसी के यहां भोजन करने गए थे, वहां एक जिज्ञासु युवा था। उसको किसी एक वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष का पुस्तक मिला पढ़ने को, और उसने उस पुस्तक में पढ़ ली कि परमात्मा भगवान यानी परमात्मा कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कोई परमात्मा दूसरा नहीं है, और परमात्मा में ही वह शक्ति, वह क्षमता है कि जीवात्मा को परम सुख प्रदान करने की क्षमता परमात्मा में है। परमात्मा कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, ऐसा लिखा है महाराज उस पुस्तक में। तो फिर ये शिव कौन है? तो फिर राम का क्या होगा? उसने प्रश्न कर लिया। युवा था वो, उसके मन में जिज्ञासा हुई, तो हमने उसके प्रश्नों का बड़े गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। हमने कहा किसी ने यदि ऐसा कहा है तो वो अपूर्ण कहा है। कहा ठीक है, गलत नहीं कह रहा है वो, कृष्ण परमात्मा है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं करेगा, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, कृष्ण परमात्मा है, हम भी स्वीकार करते हैं, सभी दुनिया स्वीकार करती है। लेकिन उसने जो दूसरा वाक्य कहा कि कृष्ण के अलावा दूसरा परमात्मा नहीं है, इस दूसरा जो पक्ष है इस पर सर्व विवाद खड़ा हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। तो यही खड़ा होगा जो तुमने प्रश्न कर लिए कि तुम्हें ही खुद संतुष्टि नहीं हुई है तो हम जैसों को कहां से संतुष्ट मिलेगा उस प्रश्न से। तो महाराज इस अवस्था में क्या कहें? हमने कहा देख, हमारी दृष्टि तो यह है, कृष्ण भी परमात्मा है, लेकिन कृष्ण ही परमात्मा है ये गलत है। ये सही है कि कृष्ण भी परमात्मा है, लेकिन ये गलत है कि कृष्ण ही परमात्मा है, ये गलत है। भी और ही में बड़ा अंतर है वो है। हम ये कह सकते हैं शिव भी परमात्मा है, लेकिन शिव ही परमात्मा है ये गलत है। ये एक पक्षीय व्याख्या है। परमात्मा के बारे में इतनी संकीर्ण व्याख्या करना ठीक नहीं है, संकुचित व्याख्या करना ठीक नहीं है। परमात्मा के बारे में यूनिवर्सल परिभाषा होनी चाहिए, सार्वजनिक परिभाषा होनी चाहिए, सभी को स्वीकार्य परिभाषा होनी चाहिए। हमारा चिंतन तो ये कहता है, हमारी दृष्टिकोण तो ये है। परमात्मा जैसा इतना विभु और महान तत्वों के बारे में इतनी सीमित और संकुचित परिभाषा कर देना, ये बुद्धिमान और विचारवानों के दृष्टि में उचित नहीं है। परमात्मा तो व्यापक है, विभु है, और परमात्मा तत्व की जो व्याख्या है वो सार्वजनिक, सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। तो शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है, राम भी परमात्मा है, गणेश भी परमात्मा है, ये भी में सभी विकल्प ओपन है कि नहीं? भी में हर विकल्प ओपन है, लेकिन ही में विकल्प नहीं है, सीमित हो गया, लिमिटेशन हो गया, तो सर्वमान्य नहीं हो पाएगा। हमने उसको एक एग्जाम्पल दिया, किसी को भूख लग रही हो तो उस भूख को दूर करना है, उसके लिए विकल्प क्या है? हैं? भोजन खाना उसका विकल्प है कि रोटी खाना उसका विकल्प है? बोलो हैं? आपको क्या लग रहा है? भोजन करना उस भूख निवृत्ति का निर्विवाद पक्ष है, उपाय है, कि रोटी खाना उस भूख के निवृत्ति का पक्ष है? देखो, जहां तक है कि भूख निवृत्ति का सवाल है, भूख निवृत्ति तो भोजन से ही होगा, भूख की निवृत्ति भोजन से होता है, भोजन उसका प्रयोजन है, भूख निवृत्ति उस भोजन का प्रयोजन है, भोजन साधन है, भोजन माध्यम है, भोजन के माध्यम से भूख की निवृत्ति अनिवार्य होगा, और यह सर्वमान्य सिद्धांत है। समझ गए कि नहीं? अब ये रही कि भोजन की परिभाषा करनी पड़ेगी, कि उसको भोजन कहा जाएगा जिसके द्वारा भूख की निवृत्ति हो, तब भोजन ये यूनिवर्सल हो गया, सबके द्वारा स्वीकार्य हो गया। अब यदि तुम भूख की निवृत्ति के लिए रोटी हेतु है कहते हो, तो छोटे से बच्चे के भूख की निवृत्ति क्या उस रोटी से प्रयोजन पूरा हो पाएगा? हैं? अब एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके मुख में दांत ही नहीं है, उस व्यक्ति का प्रयोजन पूरा होगा रोटी से? भूख निवृत्ति हो पाएगा? चबा ही नहीं पा रहा है रोटी, तो वो कहेगा कि भाई मुझे तो रोटी, मेरे दांत नहीं है, चबाया नहीं जाता, इसलिए मुझे तो खिचड़ी बना दो। तो रोटी विकल्प है कि खिचड़ी विकल्प है? तो चॉइस यहां आ गया, कोई कहता है कि रोटी खाकर भूख निवारण करो, कोई कहता है खिचड़ी खाकर भूख निवारण करो। पंजाबी होगा तो रोटी खाकर भूख निवारण करेगा, गुजराती होगा तो खिचड़ी खाएगा शाम को, है? अब बंगाली होगा तो भात खाएगा, और रोटी से उसकी भूख निवृत्ति नहीं होती, वो भात चाहिए। नेपाली होगा तो भात चाहिए, भात खाएगा वो, और गुजराती होगा तो शाम को भाखरी चाहिए, थेपला चाहिए, मतलब ये दूध भाखरी। अरे बाबा, भोजन है, ये सब भोजन है, रोटी भी भोजन है, भात भी भोजन है, खिचड़ी भी भोजन है, खिचड़ी ही भोजन नहीं है, भात ही भोजन नहीं है, रोटी ही भोजन नहीं है, रोटी भी भोजन है, और भूख की निवृत्ति भोजन से होती है क्योंकि रोटी भी भोजन है, भूख की निवृत्ति भोजन से होती है क्योंकि भात भी भोजन है, भूख की निवृत्ति भोजन से होती है क्योंकि थेपला भी भोजन है, भुक्ति निवृत्ति भोजन से होती है, क्योंकि भाखरी भी भोजन है। भुक्ति निवृत्ति भोजन से होती है, भोजन के अंतर्गत जितने पदार्थ आएंगे वे सब भोजन कहलाएंगे। लेकिन यदि कोई कहता है, पंजाबी कहेगी रोटी ही भोजन है, वो एक गलत है। बंगाली कहेगी भात ही भोजन है, तो वो एक संकीर्ण परिभाषा है भोजन की। गुजराती कहेगी भाखरी ही भोजन है, तो वह गुजराती की भोजन के बारे में संकीर्ण परिभाषा है। कोई कहे कि खिचड़ी ही भोजन है, तो वो भोजन के बारे में संकीर्ण परिभाषा है, बहुत सीमित, लिमिटेड, बहुत ही छोटी परिभाषा है। भोजन बहुत व्यापक है। रोटी प्लस भोजन, भात प्लस भोजन, भाखरी प्लस भोजन, परौठा प्लस भोजन, खिचड़ी प्लस भोजन, ये सब भूख निवृत्ति करने में समर्थ हैं। तो भोजन का सर्वत्र अन्वय है, रोटी का भात में अन्वय नहीं, भात का रोटी में अन्वय नहीं, लेकिन भोजन भात में भी भोजनत्व है, रोटी में भी भोजनत्व है। इसी तरह कृष्ण, राम, शिव ये संकीर्ण परिभाषा है, विभु और व्यापक परिभाषा नहीं है। भगवान के बारे में कृष्ण भगवान है, एक छोटी परिभाषा है। शिव ही परमात्मा है, छोटी परिभाषा है। शिव भी परमात्मा है, शिव में कृष्ण नहीं है, कृष्ण में शिव नहीं है, लेकिन कृष्ण और शिव दोनों में परमात्मा है। परमात्मा व्यापक चीज है। हम कहते क्या है, कृष्ण शिव कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं? कृष्ण के बारे में जब हम कहते हैं तो कृष्ण शिव कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं? शिव के बारे में कहना होता है तो हम क्या कहते हैं, शिव कृष्ण कहते हैं कि शिव भगवान कहते हैं? राम के बारे में जब कहते हैं तो राम कृष्ण कहते हैं कि राम भगवान कहते हैं? कृष्ण राम कहते हैं कि राम भगवान कहते हैं? राम भगवान, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, हम ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण गणेश। कृष्ण का गणेश में अनुवृत्ति नहीं, गणेश का कृष्ण में अनुवृत्ति नहीं, शिव का राम में अनुवृत्ति नहीं, राम का शिव में अनुवृत्ति नहीं, गणेश का शिव में अनुवृत्ति नहीं, शिव का गणेश में अनुवृत्ति नहीं। ये एक एक नाम दूसरे नाम से एक नाम का संबंध नहीं है, लेकिन हर नाम के साथ भगवान का संबंध है। गणेश के साथ भगवान का संबंध, कृष्ण के साथ भी भगवान का संबंध, शिव के साथ भी भगवान का संबंध, सबके साथ भगवान यानी परमात्मा का संबंध होने के कारण सबसे बड़ा कौन? हमसे पूछा, महाराज कृष्ण भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, गणेश भगवान, हमारे सनातन धर्म में ये अनेक भगवान हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन? कृष्ण बड़ा कि शिव बड़े कि राम बड़े या गणेश बड़े? हमने कहा कृष्ण भी बड़े नहीं है, शिव भी बड़े नहीं है, गणेश भी बड़ा नहीं है, राम भी बड़े नहीं है, फिर कौन है महाराज बड़े? भगवान बड़े हैं। समझे कि नहीं? तो उपासना किसकी करनी है, शिव की करनी है कि भगवान की करनी है? उपासना किसकी करनी है, कृष्ण की करनी है कि भगवान की करनी है? उपासना किसकी करनी है, राम की करनी है कि भगवान की करनी है? राम यदि भगवान हैं तो तुम राम के माध्यम से भगवान की पूजा करो, उपासना करो, उपासना फलीभूत हो जाएगी। शिव यदि भगवान हैं तो शिव की उपासना करो, तो शिव के माध्यम से भगवान की उपासना हो जाएगी, तो फलीभूत होगी। तो फलीभूत उपासना, फलीभूत तो भगवान की उपासना से होगी, न कि शिव न कि कृष्ण। कृष्ण शिव राम ये तो बहुत ही नाम और रूप, एकदम तुच्छ चीज है भगवान के सामने, परमात्मा इतना व्यापक है और कृष्ण और शिव राम और गणेश ये सीमित हैं, परिच्छिन्न हैं। और ये परमात्मा व्यापक, परमात्मा की उपासना करो। परमात्मा की उपासना का फल यह बता रहे हैं यहां इस श्लोक के द्वारा, भक्त क्या चाहता है। शंकराचार्य कहते हैं, सारूप्यम तब पूजने शिव महा देवी देवेति संकीर्तने, सामीप्यम शिव भक्ति धुर्य जनता सांगत्य संभाषणे, सालोक्यम च चरा चरात्मक तनु ध्याने भवानी पते, सायुज्यम मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। अहम कृतार्थ अस्मि, मैं तब कृतार्थ होऊंगा जब मुझे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी। आपके कृपा से मुझे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो। सारूप्य माने समान रूप वाला, समान रूप माने केवल आकार के लिए समान रूप नहीं, हर दृष्टि से, करुणा के दृष्टि से, दया के दृष्टि से, शक्ति के दृष्टि से, हर दृष्टि से सारूप्यता होनी चाहिए। परमात्मा में जितने भी विशेषण हैं, गुण हैं, भाव हैं, एक भक्त ये सारे भाव उस भक्त में आ जाए तो उसको सारूप्य बोलते हैं। परमात्मा जो उपास्य है वह यदि गौरवर्ण का है तो उपासक में वो गौरवर्णता आ जाए, उसको सारूप्य बोलते हैं। हां, शिवपुराण में कथा आती है ना, पार्वती को गौरी क्यों कहा और कब कहा। कहते हैं कि पार्वती जब पैदा हुई थी तो बहुत काली थी, एकदम काली थी, लेकिन जन्मांतरीय संस्कार था, काली होने से क्या फर्क पड़ता है। उसके शिव में अनन्य भक्ति था क्योंकि पूर्व जन्म में सती थी, शिव की ही अर्धांगिनी थी, शक्ति के रूप में विद्यमान थी, और वह जाति स्मरण लुप्त तो हुआ नहीं था सती का। पर्वत पुत्री होकर पैदा होने पर भी वो जाति स्मरण लुप्त नहीं हुआ था, और उन्होंने पुनः संकल्प कर ली, प्रतिज्ञा कर ली कि इस बार भी स्वामी तो मेरा शिव ही होगा। पार्वती ने संकल्प कर ली, बहुत लोगों ने मना किया, तुम पर्वतराज की पुत्री हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे योग्य वर की कमी नहीं है संसार में, एक से एक हैं, क्योंकि तुम राजपुत्री हो, पार्वती हो, पर्वतराज की पुत्री पार्वती हो, तुम शिव से ही ब्याहने की बात क्यों करती हो। बोले नहीं, वो मेरा एकमात्र चाहता है, उसका कोई विकल्प मेरे लिए संसार में नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा कैसे। बोले क्यों नहीं होगा, मैं तपस्या करूंगी, तपस्या द्वारा मैं उसको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। तो बचपन से ही वह साधना में लग गई। तो पुराणों में कथा है, जंगलों में चली गई, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, और यहां तक कि उन्होंने श्वास भी अवरुद्ध करके, प्राणायाम करके श्वास लेना भी छोड़ दिया। परिणाम हुआ कि व्यष्टि श्वास समष्टि श्वास में धारणा करने पर व्यष्टि श्वास प्राण को समष्टि प्राण श्वास के साथ धारणा कर लेने पर और उसके बाद कुंभक कर लेता है तो समष्टि वायु रुक जाता है, वायु चलना बंद हो जाता है क्योंकि उसने कुंभक किया। इतनी ताकत है धारणा में। व्यष्टि वायु, कोई साधक पहले व्यष्टि वायु को समष्टि के साथ एक करे, धारणा करे, और उसके बाद व्यष्टि वायु को कुंभक कर देवे तो समष्टि कुंभक हो जाएगा। आप लोगों ने पुराण में सुना है, प्रहलाद जी जब तपस्या करते थे तो वायु अवरुद्ध हो गया है, तो सब वायु, सबके प्राण रुक गए। क्या हुआ? तो बस पता चला कि प्रहलाद ने तपस्या की और उन्हें प्राणायाम करके अपने प्राण को कुंभक में धारणा कर ली, कुंभक कर ली, यानी अपने व्यष्टि प्राण को समष्टि में धारणा करके फिर उस प्राण को कुंभक कर दी तो रुक गया, तबाहकार हो गया। तो भगवान से प्रार्थना की गई तो भगवान आकर जब अपने शंख का कान में स्पर्श किया तब जाके ध्रुव का, ये ध्रुव के प्रसंग में है ये, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम युअंत प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ताम संजीव यत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव की स्तुति है ये भागवत में। तब जाके सबके श्वास चल पड़े, उनके कुंभक को तोड़ा गया। तब ऐसे ही पार्वती ने तपस्या की तो भगवान शिव आना पड़ा और आके पार्वती को स्पर्श किया और कहा कि क्यों तुम इतना कठोर तपस्या करती हो? बोले शिव, मेरी इच्छा है कि मेरी शादी आपके साथ हो, आप मेरे पति बने, मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। भगवान शिव ने कहा कि तेरी इच्छा होने मात्र शिव का मेरी भी इच्छा होनी चाहिए। बोले इसीलिए तो तपस्या की है मैंने, अब आपके भी इच्छा हो। बोले तू देखती नहीं मैं इतना गोरा हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम रजत गिरी निभम चारु चंद्रावतंसम ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरी निभम। रजत माने चांदी, चांदी सफेद होता है कि काला? सफेद। रजत गिरी निभम सफेद पहाड़ की तरह, कर्पूर गौरम कपूर सफेद होता है कि काला? सफेद है। तो इस दृष्टांत को फेल कर दो तो ब्लैक कपूर तैयार करो, प्रोडक्ट करो कंपनी में, और ये कर्पूर गौरम श्लोक को बेकार कर दो है। तो बोले मैं इतना गोरा हूं और तू इतनी काली है, जोड़ी कहां से मिलेगा? तू गोरी होगी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, शिव जी ने कह दिया। बस चल पड़े। पार्वती ने कहा कि वो भी हम करके देख लेंगे भाई। तो फिर तपस्या की और सतत भगवान शिव के गौर वर्ण का चिंतन किया और उपासना की। करते करते उनके चित्त की वृत्ति भगवान शिव के गौर वर्ण में धारणा हो गई तो पार्वती के सारा शरीर गौर हो गया। तब से उनका नाम भगवान शिव प्रसन्न हुए, आए देखे अब तो गोरी हो गई है, अब मेरा और तेरा रंग मिल गया, मैचिंग हो गया है, अब ठीक है शादी कर लेंगे। तब से भगवान शिव ने गौरी ये संबोधन किया, हे गौरी अब तपस्या बंद करो, अब तपस्या की जरूरत नहीं है। तब जाकर उनका नाम गौरी पड़ा है, गौरवर्णत्वात गौरी। ये सारूप्य, भगवान शिव गौर हैं तो वो भी गौर हो गए। उपासना का फल है, उपासना से हुआ जा सकता है। लेकिन भगवान यहां शंकराचार्य जी कहते हैं सारूप्य मुक्ति के लिए पूजा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारूप्यम तव पूजने, आपके नित्य निरंतर सतत शास्त्र विधि से षोडशोपचार पूजा जैसे भगवान विष्णु ने की थी, भगवान विष्णु ने जैसे शिवजी की पूजा की थी, ये बात किसी को जब कहते हैं वैष्णवों के समाज में तो उन लोगों को पचता नहीं है। विष्णु ने शिवजी की पूजा की और इस तरह पूजा की, ये कहेंगे तो ये शैव लोग हमको उड़ाने के लिए ऐसा बना लिया है, कल्पना की। और हम कहेंगे कि शिव पुराण में लिखा है। बोले भागवत में लिखे हो तो बताओ, हमको शिव पुराण नहीं मानते। सीधे हमसे एक ने कह दिया, जवाब दिया, शिव पुराण हम नहीं मानते, शिव पुराण को हम प्रमाण नहीं मानते, भागवत को हम प्रमाण मानते हैं। भागवत में लिखा हो कि शिवजी ने, विष्णु ने शिवजी की पूजा की है, तब फिर हमको बताओ। ऐसा भी बोलते हैं पूर्वाग्रही, जबकि निर्विवाद है। जिस वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, उसी वेदव्यास जी ने शिवपुराण की रचना की है, मानते नहीं है। तो भगवान विष्णु ने शिवजी की जो पूजा की, आएगा प्रसंग में। पुष्पार्चने विष्णुता, ये आगे के श्लोक में लिखा है। हरिष्ते सहस्रम कमलवधिमादा युपदयोर, भगवान विष्णु का नियम था प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प को लेकर, कमल के फूल को लेकर, ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम भवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम सर्वाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम पशुपतये नमः कमल पुष्पम समर्पयामि। 1000 कमल का फूल टोकरी में रखने के बाद शिवजी के एक एक नाम उच्चारण करते हुए, कमल पुष्पम समर्पयामि करते हुए फूल चढ़ाते थे। तो एक बात महिमनी स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने इसका उल्लेख कर दिया है। एक बार की बात है, इसी तरह 1000 फूल टोकरी में ले लिया और शिव सहस्र नाम उच्चारण शुरू किया। भगवान शिव ने विचार किया कि इसकी जो मेरी पूजा के प्रति जो निष्ठा है कैसी है, जरा देखें तो सही। ये पूजा केवल औपचारिक रूप में कर रहा है कि वास्तव में भाव और निष्ठा से कर रहा है, होश पूर्वक कर रहा है कि बेहोशी में कर रहा है। कई बार हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन बेहोशी में करते हैं, होश नहीं रहता है। और कई बार पूजा करते हैं तो वो औपचारिकता पूरा करने के लिए करते हैं, पूजा करनी है तो कर दिया, बस खत्म हो गई, हो गई पूजा। कहे मंदिर में जो मिला वो चढ़ा दिया और घंटी हल्ला दी, बस जयकारा कर दी एक दो बार, कृष्ण भगवान की जय, शिव भगवान की जय, हो गई पूजा, धूप बत्ती बाल दी। ये औपचारिकता है, ये मशीनी पूजा है, ये हृदय की पूजा नहीं है। तो भगवान शिव ने एक फूल टोकरी में से निकाल ली, गायब कर दिया, शिव ने ही गायब कर दी। अब शिव सहस्र नाम, एक नाम बचा हुआ है टोकरी में, फूल नहीं है एक। भगवान विष्णु बहुत असमंजस में पड़ गए कि अब करें क्या, संकल्प करके बैठा हूं, विधि पूरा हुए बिना, पूजा पूर्ण हुए बिना आसन से मैं उठूं कैसे, और किसी को कहूं कि अरे एक फूल कम हो गया ला दो तो फिर भंग हो जाएगा, बोलना भी ठीक नहीं, उठना भी ठीक नहीं, क्या करें। तो एक नाम अभी बचा है, फूल खत्म हो गए हैं, तो उनको तुरंत याद आ गया कि सारी दुनिया भगवान विष्णु को कमल नयन करते हैं, नेत्र कमलम कमल नयनम, तो मेरे नयन ही कमल हैं, कमल जैसे मेरे नयन, कमल नयन मेरा नाम है, इसका मतलब मेरे नयन कमल है। तो उन्होंने तुरंत एक आंख निकाल दी और चढ़ा दी, अपने नेत्र को ही पुष्प के रूप में चढ़ा दिया शिवजी को। तो भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और विष्णु को कहा कि वाह तुम्हारी भक्ति। तो शिव पूजने, ओम नमो नारायणाय। हाँ तो आएंगे महाराज, ऊपर बैठ पाएंगे महाराज। शिवानंद लहरी शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से युक्त शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है।
मेरी कठिनाई क्या है, मेरे को 5 मिनट
ना। ठीक है महाराज। सारूप्यम तव पूजने शिव महा देवेति संकीर्तने सामीप्यम शिव भक्ति धुरी जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम चराचरात्मकतनु ध्याने भवानी पते सायुज्यम मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि अहम्। शायद 28वां श्लोक चल रहा है। तो यह 4 प्रकार की मुक्ति भक्तों की होती है, ज्ञानी की नहीं। ध्यान देना, ज्ञानी की तो स्वरूप मुक्ति है। भेद मूलक मुक्ति नहीं है, अभेद मूलक मुक्ति है ज्ञानी की। भक्तों की ये 4 प्रकार की मुक्ति है, 4 में से कोई एक मुक्ति भक्तों की होती है और भक्त यही चाहते हैं, चाहते भी भक्त वही है। सारूप्यम तव पूजने, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान की नित्य निरंतर, परमात्मा की नित्य निरंतर जो पूजा करता है विधिपूर्वक निष्ठा से भावपूर्वक, तो उस पूजा का फल होगा सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति माने जैसे भगवान शिव हैं वैसे ही, शिव सरह शिव के समान, शिव और भक्त यदि बैठेगा दोनों तो लोग पहचानने में मुश्किल पड़ जाएगा कि कौन से भक्त हैं और कौन से शिव जी हैं। सारूप्य, और साधारण व्यक्ति तो शिव भक्त को भी शिव रूप ही मानते हुए आराधना करते हैं, और हम लोगों की परंपरा यही रही है। भगवान के भक्तों को भी हम भगवान की तरह ही श्रद्धा और भाव और आदर पूर्वक आराधना करते हैं। प्रहलाद की उसी तरह हम आराधना करते हैं जिस तरह भगवान विष्णु की करते हैं। ध्रुव की हम उसी तरह आराधना करते हैं जिस तरह हम भगवान विष्णु की करते हैं। सनत कुमारों की उसी तरह हम आराधना करते हैं जिस तरह भगवान शिव की करते हैं, क्योंकि वो सारे सारूप्यता भक्तों में प्राप्त हो जाता है। सारूप्यम तव पूजने, भगवान की पूजा, परमात्मा की यदि पूजा निष्ठा से कोई करता है तो पूजा का फल होता है सारूप्य मुक्ति। शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यम, पूजा से सारूप्य मुक्ति। प्रिय शंकराचार्य जी विभाजन कर रहे हैं, ये परिभाषा कर रहे हैं, शिव महादेव इति संकीर्तने सामीप्यम, जो नित्य निरंतर भगवान के दिव्य नाम हैं शिव महादेव आदि, मृड़ा मृत्युंजय, सतत इन नामों का भक्तों के बीच में नित्य निरंतर सतत अनवरत कीर्तन करता रहता है, तो कीर्तन से सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं शिव भक्ति धुरीय जनता सांगत्य संभाषणे, एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में आपस में भगवान के दिव्य लीलाओं का महत्व का चर्चा यदि श्रद्धा से करते हैं, संभाषणे जैसे आप हम कर रहे हैं, ये प्रवचन ही संभाषण है। हाँ, ये प्रवचन क्या है, यही तो संभाषण है। सम्यक भाषणम संभाषणम, सम्यक माने यथार्थता, सत्यता का संवाद बोलना। हम असत्य को नहीं बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं। यथार्थ वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं कौन हूं, जिज्ञासु पूछता है और उत्तर देने वाले कहते हैं ये तत्त्वमसि, यही तो संवाद है, यही तो संभाषण है, सम्यक भाषण है ये। इससे सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है, इन संवादों से कोई असत्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए इसको संवाद कहा, संभाषण कहा। सांगत्य शिव भक्ति धूरिय जनता सांगत्य, शिव भक्ति में बहुत ओतप्रोत हुए हुए जो शिव भक्त लोग हैं, अन्य अन्य भक्त हैं, उन भक्तों के साथ सुमधुर संबंध बनाकर प्रेम पूर्वक शिव जी के ही बारे में उनके साथ बैठकर संभाषण करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, शिव तत्व के बारे में संवाद करते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधः, वादा प्रवदताम हम, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप ही बता दिया वाद को, लेकिन वितंडा को तो भगवान ने खंडन कर दिया है। वाद का अर्थ होता है संवाद, वादे वादे जायते तत्वबोध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ये जिज्ञासा, यही मनन, वेदांत ने इसको मनन कहा है और गीता में उसी को वाद कहा है, उसी को वाद प्रवदताम हम, वादे वादे जायते तत्वबोध। तो सामीप्यम शिव भक्ति धूर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम, पूजा से सारूप्य मुक्ति, कीर्तन से सामीप्य मुक्ति और सत्संग से सालोक्य मुक्ति, ये मुक्ति की परिभाषा कर रहे हैं शंकराचार्य। चरा चरात्मक तनु ध्याने भवानी पते, संबोधन है, हे भवानी पति, हे शिवा, चरा चरात्मक तनु ध्याने, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में एकमात्र अपना स्वरूप या शिव स्वरूप, शिव के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं जानना, चिंतन नहीं करना। चरा चरात्मक तनु स्वरूप का अर्थ होता है, सामान्य वाच्यार्थ में शरीर को तनु कहा जाता है, लेकिन यहां तनु शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। सब एक ही भगवत स्वरूप का दर्शन जिसने जो करता है, चर और अचर में, स्थावर और जंगम, चर और अचर। हम तो एक पत्थर को पत्थर जड़ है करके छोड़ देते हैं, लेकिन उस पत्थर अवच्छिन्न चैतन्य साक्षात शिव वहां तद अधिष्ठान के रूप में, तद अवच्छिन्न के रूप में, तद आधार के रूप में, तद अस्तित्व के रूप में भगवान शिव तत्व तो उस पत्थर में भी विराजमान है। जिसको सामान्य परिभाषा में जड़ कह देते हैं, वो जड़ अस्तित्व भी उस परमात्मा के सामान्य सत्ता में ही टिका हुआ है, परमात्मा की सत्ता से वो पत्थर अस्तित्व में है। इस प्रकार की भावना जो करना है उसी को कहते हैं चरा चरात्मक तनु ध्याने। जो इस तरह भावना करता है, एकमात्र शिव को शिव का दर्शन करता है, हर प्राणी में महात्माओं ने दृष्टांत दिया है। महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं? महाराज जी कुछ आशीर्वचन होगा है ना? तो ऐसे 7 बजे तक का कार्यक्रम है तो आज कार्यक्रम महाराज जी के आशीर्वाद से पूरा करते हैं, तो बाकी कल पूरा करेंगे।
ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्नया शुभ ओम शांति शांति शांति। परम सम्मन्नी वंदनी विद्वद्वरेण्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद जी महाराज, श्री मदनलाल जी डालमिया जी, श्री हमारे सारे ट्रस्टीगण बंधुओं, मातृशक्ति, आज गंगा दशहरा है, होना चाहिए था मुझे गंगा के तट पर, लेकिन यहां एक बड़े विशाल भवन के निर्माण के कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के लिए वचनबद्ध था और उसकी तारीख 17 तारीख निकल आई। उस भाई ने बड़ा आग्रह किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। उसके बाद शारीरिक दृष्टि से भी 81 वर्ष की आयु और 82 में प्रवेश होने वाला है, तो डॉक्टर उदवाड़िया मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मिलना था, उन्होंने तत्काल समय मिलना मुश्किल, 2-3 मास तक तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, पर मेरे से प्रेम है, मेरे स्वामी जी को तो देखेंगे, तो उनके यहां गए। डालमिया जी का फिर बड़ा आग्रह आया, मैंने चलो प्रेमपुरी आश्रम तो एक तीर्थ जैसा ही है, किसी एक महात्मा के निवास से भी स्थान तीर्थ बन जाता है, और यहां तो प्रतिमास प्रतिवर्ष और विगत अनेक वर्षों से महापुरुषों का आगमन होता है, इसलिए तीर्थवत ही। और गंगा जी के पास होते तो गंगा लहरी देखने को मिलती, यहां आ गए तो शिवानंद लहरी में कुछ गोते लगाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारे यहां बिना लहर के कोई काम नहीं होता है। गांव में हमने सुना है कि सब जब कभी सांप काट खाता है ना, तो गांव के लोग कह रहे हैं कि लहर चल रही है, वो लहराता है सांप की तरह से। तो वास्तव में भजन करते समय भी हम लहराते हैं ना, तो लहरी के बिना काम चलता नहीं, लेकिन अगर लहरी गहरी हो जाए तो वही समाधि बन जाती। पहले संकीर्तन होता है जिसमें शरीर हिलता है, उसके बाद उन्हें रसानुभूति होती है, स्पंदन कम हो जाता है, उसके बाद मनन की गहराई आती है, तब चिंतन के साथ जुड़ने के बाद व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, और ध्यान करते करते जब जगत का संपूर्ण विस्मरण और आत्मा के आनंद में पूर्ण आह्लादित हो जाता है तो वह समाधि की अवस्था मिलती है। सत्संग करते रहने से जरूर मिलेगा, और सत्संग स्वयं में अपने आप गंगा है, इसलिए मुझे लगा गंगा दशहरा हो रहा है आज। राम भक्ति जहां सुर सर धारा कि सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, विनिषेध मय कलिमल हरिणी करम कथा रवि नंदन वरणी, सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु तो साधु समाज प्रयाग। ये सत्संग प्रयाग जो आप शिवानंद लहरी के पवित्र प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, तो आज ऐसा ही आप मन के चलना कि आज तो प्रयागराज में गोता लगा के आया, सब मन के ऊपर ही है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनके साहित्य और जिनके दर्शन में अत्यंत प्रभावित हूं, उन्होंने एक जगह लिखा कि एक महात्मा कहीं रहता था, अपनी कुटीर के सामने एक बड़ा सेठ आया, उसने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा मैं एकांत में बैठा था, दूसरी जगह मंदिर बनाता तो अच्छा था, पर भाई इनको मना कैसे कर सकते हैं। तो जितनी जितना मंदिर बनता ऊंचा, उतना रोज शाम को ध्यान करके और भगवान से कहते हैं कि महाराज मेरा भी मंदिर बना देना ठीक से, और मानसिक रूप से मंदिर बन रहा है। सेठ का बाहर मंदिर बन रहा है, फकीर का मंदिर भीतर बन रहा है, अब तो बड़ा पाठोत्सव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा का समय आ गया, पूजा हो गई। बैठे हुए विरक्त संत ने कहा महाराज मंदिर तो मेरा कल बन चुका था, पंडित सब लोग वहां लगे हुए थे, मैंने कहा दो जगह आपके प्राण प्रतिष्ठा क्या करानी, प्राण प्रतिष्ठा वहां हो जाए, प्रतिष्ठित आप यहां हो जाए तो कितना अच्छा लगे मेरे नाथ। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब मंदिर में तो मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी, जब कर्टेन हटाया पर्दा हटाया तो मूर्ति नहीं, अब सब बड़े दुखी हुए कि हुआ क्या। उस जमाने में अंग्रेजी का एक किडनैप शब्द निकला नहीं था, किडनैप शब्द उसमें नहीं निकला था, किसी ने किडनैप नहीं किया था, लेकिन देखा कि वो महात्मा बाहर खड़े होकर के कभी नाचते नहीं थे, पर आज नाच रहे। सब वहां पहुंच गए, बोले महाराज बड़े सुखी हो, मंदिर के उत्सव में तो आए नहीं, बोले आप मंदिर बना रहे थे और भगवान की प्रतिष्ठा मैंने कराई, विराजमान है दर्शन करो, सबने दर्शन किए तो कुटीर में भगवान मंदिर दिखाई पड़े, सबने प्रणाम किया। महात्मा ने कहा मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब आपके दो मंदिर हैं, एक तो मेरे मन मंदिर में बैठना और सेठ जी के मंदिर में वहां स्थापित हो जिसके लिए इन्होंने पैसा खर्च किया है, तो आप भले यहां बैठे हो लेकिन मन से यदि आपने गंगा का ध्यान किया तो साधु समाज प्रयाग, तो आप प्रयाग में स्नान करेंगे। सुन लेकिन सुन समझ जाएं, पहले सुनेंगे फिर समझेंगे, श्रवण मनन निध्यासन साथ चलना चाहिए। मज्ज ही अति अनुराग, अनुराग पूर्वक उसमें गोता लगाएंगे, फुलह ही चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। उस प्रयाग में जाने का फल सबसे बड़ा क्या है, जो पूज्य स्वामी महाराज महामंडलेश्वर जी बता रहे थे कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। आपस में विचार करने के बाद में क्या मिलेगा, तत्वबोध। जो कुछ देख रहे हैं वो सब भगवान, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये वेदांति की दृष्टि, और अजित देखूं तो श्याममयी है, ये भक्ति की दृष्टि। शब्दों का अंतर है, चेतना एक स्थान पर है। और उसके बाद बादे मार्गे मार्गे जायते साधु संग, संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति, कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार भाषा भाषा सच्चिदानंद भाषा। वादे वादे जायते तत्वबोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से आपके हृदय में, मन में, बुद्धि में, कर्म में, चेतना में, सर्वत्र वही विराजमान होंगे। जो अभी तक हम लोग जिन्ना है, बुरा मत मानिए, शववत है, शववत। जब वासना से घिरा हुआ है जीव तो शव जैसा है। जीवत सव समानते प्राणी, गोस्वामी जी ने उसका समर्थन किया है, बड़ा लंबा प्रसंग है। इसलिए ये शिवानंद लहरी सुनते सुनते आपके जीवन के शवत्व तो समाप्त हो जाए और शिवत्व तो प्रकट हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ समय का बहुत पालन करने की आदत होने से मैंने कहा महाराज मैं केवल 5 मिनट ही कुछ कहूंगा। मैंने शब्दों के पुष्प आप सब परमात्मा के स्वरूप पर चढ़ाए, स्वामी जी महाराज ने आग्रह किया, उनको भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।